अभी ठीक है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जो ज्योति जना वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय ज्योति जना वल्लभ जय गिरिवर धारी, यशोदानन्द जय रजनरञ्जन, जय यशोदानन्द जय रजनरञ्जन। जय रघुनाथ रामचारी जय कुंज बिहारी, जय रघुनाथ रामचारी जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, राधा माधव जय कुंज बिहारी, नृप हरि गो हरि गो हरि गो हरि गो, जय प्रभु बाबा प्रभु बाबा प्रभु बाबा, जय प्रभु बाबा, अष्टोत्तरशास्त्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवरम दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। शिशिराधिकारण ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री श्री यशोदा दामोदर की जय। श्री भूगर्भ गोस्वामी तिरुभावतिथि महामहोत्सव की जय। श्री काथीश्वर पंडित तिरुभावतिथि महामहोत्सव की जय। श्री कृष्ण रास यात्रा महामहोत्सव की जय। श्रीमती तुलसी शालिग्राम विवाह महामहोत्सव की जय। श्री पाद निम्बार्काचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। भीष्म पंचक महामहोत्सव की जय। गौर पे मनंदी ऑल ग्लोरी टू सुमन डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू सुमन डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू सुमन डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एन गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आज तो बहुत से त्योहार हैं, समय बहुत सीमित है तो अगर समय ज्यादा हो जाए तो क्षमा कर देना, ठीक है तो एक तो तुलसी शालिग्राम विवाह का जो उत्सव है इसकी कथा बहुत विस्तृत है, तो मैं संक्षेप में बताता हूँ। ये जो कथा है तुलसी शालिग्राम विवाह की, हरि बोल, क्या हो गया, हरि बोल, हरि बोल, आवाज आ रही है सबको, आवाज सुनाई पड़ रही मेरी, हरे कृष्णा। तो मैं क्या बता रहा था, तुलसी शालिग्राम विवाह की जो घटना है ये दो कल्पों में अलग अलग प्रकार से हुई। एक कल्प में जो वृंदा, हरि बोल, हरि बोल, ठीक है, ये बार बार बंद हो जाता है, हरि बोल, हरे कृष्णा। एक कल्प में वृंदा जलंधर की पत्नी थी और भगवान ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के साथ सहवास किया, जिससे जलंधर की मृत्यु हुई और वृंदा ने भगवान को साथ दिया, जिससे शालिग्राम बने और वृंदा हुई तुलसी। और दूसरे कल्प में वृंदा शंखचूड़ नाम के यक्ष की पत्नी थी और भगवान ने शंखचूड़ का रूप धारण किया, इस प्रकार उसका व्रत, पातिव्रत भंग किया, जिसके कारण वृंदा ने साथ दिया भगवान को शालिग्राम बनने का और भगवान ने जो है उसको, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, ये भौतिक संसार की बाधाएं, हरि बोल, आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा, 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 हरे कृष्णा। तो मैं क्या बता रहा था, दूसरी कल्प की कथा है कि वृंदा शंखचूड़ के यक्ष की पत्नी थी और भगवान ने शंखचूड़ का रूप धारण किया, उसका पातिव्रत भंग किया और वृंदा के हिसाब से भगवान शालिग्राम बने और भगवान ने वृंदा को तुलसी वृक्ष बनने का साथ दिया। तो एक घटना जो जलंधर से संबंधित है, हरि बोल, ये आवाज बार बार कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी समाप्त हो जाती है। तो मैं क्या बता रहा था, ये घटना जो जलंधर से संबंधित है इसमें लिखा है, ये कहीं से मुझे मिली है, तुलसी चालीसा है, जिसमें लिखा है कि पतिव्रता वृंदाधि नारी को न संगे पति संघारी। पतिव्रता के कारण, वृंदा के पतिव्रता होने के कारण उसके पति का कोई संघार नहीं कर पाता है और पति कैसा है, महान असुर है, है? तो कभी कभी ऐसा विरोधाभास हो जाता है कि स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती है, उसके पतिव्रत के प्रभाव से जो पति है उसका कोई संघार नहीं कर पाता और पति कैसा है, असुर है, बहुत बड़ा असुर है ना। तो भगवान ने क्या किया, तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा ढेक हरी पहुंचो जाई। तो जलंधर का रूप धारण करके भगवान वृंदा के पास पहुंचे। कियो सतीत्व धर्म देही भंगा, तो भगवान ने सतीत्व धर्म भंग कर दिया। भयो जलंधर कर संघारा, तो वृंदा के सतीत्व का भंग होने से जलंधर की मृत्यु हो गई शिव जी के हाथों। सुनी वृंदा और शोक अपारा, तो वृंदा के हृदय में बहुत अपार शोक हुआ। तेही क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उतारी। तो उसी समय भगवान ने अपना कपट छोड़ करके अपना रूप दिखलाया, हरि रूप दिखलाया, है? तो वृंदा ने जो है देख करके कि भगवान ने मेरे साथ छल किया, बोली जलंधर ही जस हत्यो अभीता, श्री रावण है हरि सीता, कि आपने जो है जलंधर का जिस प्रकार से संहार कराया वो रावण बन करके सीता का हरण करेगा। अस प्रस्पर्शम हृदय तुम्हारा धर्म खंडी मम पति संहारा, आपका हृदय पत्थर के समान है, इसलिए आपने धर्म का खंडन करके मेरे पति का संहार कराया। कौन कह रही है? वृंदा कह रही है। यही कारण नहीं साप हमारा होवे तनु पाषाण तुम्हारा, तुम्हारा हृदय पत्थर जैसा है तो शरीर भी पत्थर जैसा हो जाए, हमारा साप लो कि जैसा हृदय पत्थर जैसा है तो शरीर भी तुम्हारा पत्थर जैसा हो जाए। सुने हरि तुरंत ही वचन उतारे, तो ऐसा सुनकर के भगवान ने तुरंत कहा दियो साप तुम बिना विचारे। भगवान ने क्या कहा कि तुमने विचार नहीं किया मुझे साप देते समय। लक्ष्मण निज करतूत पति को, तुमने अपने पति का करतूत नहीं देखा कि जिस पतिव्रत के प्रभाव से तुम पति की रक्षा कर रहे हो वो पति तुम्हारा कैसा है। लक्ष्मण निज करतूत पति को छलंग चह जब पार्वती को, तो पार्वती को छल करने के लिए उसने शिव का रूप धारण किया था, तुम्हारे पति ने पार्वती को छल करने के लिए शिव का रूप धारण किया था तो वो तुम्हें चरित्र नहीं दी, अपने पति का चरित्र नहीं देखा। जड़मती तुम अस हो जड़ रूपा, तो तुम्हारी बुद्धि भी क्या है पत्थर जैसी है, दिमाग पत्थर जैसा है। वृंदा भगवान से कहे तुम्हारा हृदय पत्थर जैसा है, और वृंदा कहती तुम्हारा, भगवान कहते हैं तुम्हारा दिमाग पत्थर जैसा है। दोनों एक दूसरे को पत्थर बताते हैं, है ना, ये भी प्रेम कला है। तो जो है वृंदा कहती है कि तुम्हारा हृदय पत्थर जैसा है तो तुम्हारा शरीर भी पत्थर जैसा हो जाए, है? और भगवान कहे तुम्हारा दिमाग पत्थर जैसा है न, जड़ है, जलमती तुम अस हो जड़ रूपा, तो तुम भी जड़ रूप हो जाओ, जड़ रूप हो जाओ। जगमह तुलसी बेट अनुपा, तो संसार में अनुपम तुलसी का वृक्ष बनो, तुलसी का वृक्ष भी जो है मैं बनो तो कैसे बनो अनुपम, है ना। धर्म रूप हम सालिग रामा, तो हम सालिग राम का रूप धारण करेंगे, नदी गंडकी बीच ललामा, गंडकी नदी की, नदी के अंदर हम सालिग राम का रूप धारण करेंगे। जो तुलसी दल हमें चढ़ी है सब सुख भोग्य परम पद पई है, जो हमको तुलसी दल चढ़ाएगा तो संपूर्ण सुख भोग करके परम पद प्राप्त करेगा। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, तुलसी के बिना भगवान का शरीर जलता है। अतः उरत शीश उर पीरा, भगवान के सिर में और हृदय में बहुत दर्द होता है तुलसी के बिना। जब तुलसी भगवान को चढ़ाते हो तो भगवान के हृदय का दर्द और सिर का दर्द दूर होता है। कितना अच्छा है। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, जो सहस्त्र घट अमृत धारत, जो तुलसी दल को चढ़ाएगा और कोई व्यक्ति हजार घटा घड़े अमृत के भगवान के सिर में डाले, है ना, तो वो तुलसी दल ज्यादा भगवान को सुख देने वाला है। हजार घड़े अमृत के भगवान के सिर में कोई डाले, उससे ज्यादा फल है तुलसी दल चढ़ाने का। तुलसी हरि मन रंजनहारी, रोग दोष दुख भंजनहारी, तो तुलसी जो है हरि के मन का रंजन करने वाली, हरि के का मनोरंजन करने वाली है, रोग दोष दुख भंजन करती है तुलसी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। तो ये कुछ बातें मैंने जो है आपको बताई। व्यंजन हो छप्पनहु प्रकारा, बिनु तुलसी दल हरि न प्यारा, छप्पन प्रकार का व्यंजन भी हो, बिना तुलसी के हरि को वो स्वाद नहीं आता, उनको भगवान को स्वाद नहीं आता। सकल तीर्थ तुलसी तरो छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। तो इस तरह से जो है हमने कुछ चर्चा की तुलसी शालिग्राम विवाह की, और आज भीष्म पंचक का अंतिम दिन है, एक सौ सत्ताईस। ये कथा जो है पद्म पुराण में है। पृथु महाराज नारद जी से पूछते हैं, पृथु महाराज का चरित्र बहुत विस्तृत है श्रीमद् भागवत चौथे स्कंध में, तो ये पद्म पुराण में पृथु महाराज नारद जी से पूछते हैं, पूछते हैं नारद जी की ये कथाएं महाराज पृथु बड़ी श्रद्धा एवं मनोयोग से सुन रहे थे, साथ ही अपनी जिज्ञासाओं का समन भी कर रहे थे। अब उन्हें भीष्म पंचक व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा हुई, तब उन्होंने नारद जी से इस प्रकार कहा, हे देवर्षि आप सर्व ज्ञाता हैं, अब भीष्म पंचक व्रत जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है के विषय में बताएं, ये किस कारण इतना प्रसिद्ध हुआ ये जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। जानना चाहिए, भीष्म पंचक व्रत हम लोग नहीं कर सकते, वे महात्म जानना चाहिए। नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, ये व्रत अनादिकाल से था परंतु बीच में लुप्त हो गया था। तो पहले पंचक व्रत कहलाता था, फिर बाद में लुप्त हो गया, फिर भीष्म देव ने इसको किया तो फिर इसका नाम पड़ गया भीष्म पंचक, है ना। पहले पंचक व्रत कहलाता था तो बीच में लुप्त हो गया था, इसका पुनः उदय कैसे हुआ ये वृत्तांत सुनो। इस युग में भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को यह व्रत बताया था, उन्होंने इसे सर्वप्रथम किया, इस कारण इसका नाम भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सबसे पहले भीष्म जी ने किया, यानी लुप्त होने के बाद इसकी परंपरा ही लुप्त हो गई थी, फिर भगवान ने भीष्म जी को बताया तो भीष्म जी ने किया तो फिर भीष्म पंचक कहलाया। निरजन, महाभारत युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए, संदेह विदुर जी के पास पहुंचे, तो भगवान ने सबको मना कर दिया था कि मैं किसी घर में नहीं ठहरूंगा। भीष्म, द्रोण सब कहते हमारे घर में ठहरिए, तो भगवान ने कहा था मैं किसी घर में नहीं ठहरूंगा। क्यों? क्योंकि द्रौपदी का जब अपमान हो रहा था तो आप लोगों में से किसी ने विरोध नहीं किया विदुर जी के अलावा, इसलिए विदुर जी के घर में भगवान ठहरे, समझ रहे। तो सर्वप्रथम भगवान विदुर जी के पास पहुंचे, विदुर जी ने उनका हृदय से आदर सत्कार किया, तत्पश्चात वे भीष्म जी के पास गए और श्री कृष्ण ने अपने आगमन का संपूर्ण वृत्तांत भीष्म को बताया। तो भीष्म जी बोले, श्री कृष्ण आप मेरी कुछ उत्सुकता का समाधान करें, आप तीनों लोगों के स्वामी होते हुए भी केवल पांडवों की तरफ से ही दूत बनकर आए हैं, पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम है इसका क्या कारण? भक्त तो बहुत हैं, ये भगवान स्वयं दूत बने, भगवान तो अपने भक्तों का काम अनेक प्रकार से कर सकते हैं, ये स्वयं दूत बनना, उनके रस चलाना, उनके साथ हंसना, उनके साथ रोना, उनके साथ सोना, उनके साथ खाना चलना फिरना, है तो इतना जो सौभाग्य है पांडवों को वो तो सब भक्तों को नहीं मिलता। भीष्म जी पूछ रहे हैं इसका क्या कारण है, तीनों लोग आपके बस में हैं, तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत तप जप दान पुण्य अथवा यज्ञ किया है, अथवा ऐसा कौन सा वशीकरण उनके पास है जिसके कारण आप उनके बस में हो गए, इतने बस में हो गए, है ना। ये सुनकर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गंगा पुत्र, यद्यपि गुप्त रहस्य है तथापि आपकी उत्सुकता शांत अवश्य करूंगा। पूर्व जन्म में उन पांचों भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझे अत्यंत प्रिय है, इस कारण हे गंगा पुत्र मैं उनके बस में हूं। कौन कह रहे? भगवान कृष्ण। किससे कह रहे? भीष्म जी से कह रहे हैं, हे मधुसूदन अब तो मेरी उत्सुकता और अधिक बढ़ गई है, कृपया बताएं कि वो कौन सा व्रत है जिसे करने से आप बस में हो जाते हैं। सुनिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपको पूरा वृत्तांत सुनाता हूं। प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में पांच ब्राह्मण थे, इनके नाम थे कवि, सुचि, दृढ़, दंत और हंस, ये पांचों पांडव। पिछले जन्म में क्या थे? पांच ब्राह्मण थे। ये पांचों सभी वेदों के ज्ञाता थे, युवा थे, रूपवान थे और दान विद्या में निपुण थे, संगीत विद्या में निपुण थे। सभी दिशाओं में जाकर उन्होंने अपनी दान विद्या द्वारा खूब धन अर्जित किया था। भ्रमण काल के समय वे मथुरा नगरी के राजा सुबीर के राज्य में पहुंचे, उनकी राज्यसभा में अपनी संगीत कला के प्रदर्शन की इच्छा थी। चार दिन उपवास कर वे पवित्र परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे, फिर उन्होंने किसी से राजा के संबंध में संपूर्ण जानकारी ली। उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा की एक कादम्बरी नाम की भोग पत्नी जो संगीत विद्या में निपुण और मधुर गान करने वाली है, नित्य केवल राजा के मनोरंजन के लिए नृत्य एवं गायन करती है। उसका रूप लावण्य और यौवन अद्वितीय है। क्या नाम है इसका? कादम्बरी। ये कौन है? द्रौपदी है। ये पांच पांडव जो है, यहाँ पांच ब्राह्मण है, जो संगीत विद्या के जानकार हैं और वो जो है गान और नृत्य करने वाली कादम्बरी राजा की भोग पत्नी है। ये सुनकर पांचों स्थान पर जा खड़े हुए, जहां से कादम्बरी का नृत्य और गान का स्वर सुनाई पड़ता था, तभी राजा के पास आने जाने वालों के मध्य खड़े होकर इस प्रकार कहने लगे, बड़े दुख और आश्चर्य की बात है कि यहाँ राजा के पास अच्छे संगीत कला और गान का गाता नहीं है, कादम्बरी के नृत्य करते समय बजने वाली वीणा के तार तक कसे हुए नहीं है। ये बात उड़ती उड़ती राजा के कानों तक पहुंची, तब राजा ने पांचों को वहां बुलाया कि भाई अच्छे विशेषज्ञ हैं कोई, इसकी निंदा कर रहे हैं। वहां कादम्बरी का नृत्य हो रहा था, पांचों ने वहां पहुंचकर राजा को आशीर्वाद दिया, ब्राह्मण आशीर्वाद देता है ना, और अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। कादम्बरी ने उन्हें संगीत और नृत्य विद्या में प्रवीण समझकर उनके सम्मान में अपना एक अति विशिष्ट नृत्य प्रस्तुत किया। हे गंगा पुत्र, जब उसने चक्र में ताल दी तब ब्राह्मणों ने उसे रोका। कादम्बरी ने चक्र छोड़कर ताल का प्रतियोग्य उत्तर दिया, यथा योग्य उत्तर दिया, किंतु चक्र खंडित ना किया। कादम्बरी की कला उसके रूप माधुरी पर पांचों ब्राह्मण मोहित हो गए। कादम्बरी भी उन पांचों के गुणों पर मोहित हो गई। उसी रात्रि उसने एक सखी के माध्यम से उन पांचों तक ये संदेश भेजा कि उनमें से एक एक व्यक्ति प्रतिदिन नगर के उत्तर की ओर यमुना तट के समीप वृक्षों से घिरे अनंत नामक निर्जन तीर्थ पर मेरे पास आकर अपनी विद्या और गुण का प्रदर्शन करे। उस समय मैं वीणा और राग का कौशल दिखलाऊंगी। ब्राह्मण कला प्रेमी और गुणवंत संगीतकार थे, कादम्बरी से प्रभावित भी थे, अतः उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भीष्म, मेरा एक भक्त था, दुष्ट संगति के भय से गांव से दूर वहां आकर रहता था। उन दिनों वो भीष्म पंचक व्रत कर रहा था और उसी मंदिर में मेरा पूजन करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन कवि नाम का बड़ा भाई उस देवालय में आया। सबसे पहले तो पांच रात में जो है ये पांचों भाई एक एक रात में गए कादम्बरी कादम्बरी से मिलने के लिए, है ना। तो सबसे पहले बड़ा भाई कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन कवि नाम का बड़ा भाई मंदिर में आया। कादम्बरी भी समय पर पहुंच गई। वहां मेरे भक्त ने जिस प्रकार मेरा पूजन किया, कवि नामक उस ब्राह्मण ने भी वैसे ही मेरा पूजन किया। उसके बाद वीणा लेकर उसने गान आरंभ कर दिया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, अतः उसे गान और कादम्बरी को नृत्य करते देख उसे लेश मात्र भी ताम क्रोध नहीं आया। प्रातःकाल होने पर मेरे भक्त ने गोबर से आचमन किया। ये पंचक व्रत में ही होता है, पहली रात्रि है ना, यानी द्वादशी के दिन थोड़ा सा गोबर खाना और कुछ नहीं खाना और कुछ पीना, बड़ा कठिन व्रत है। गोबर कभी नामक उस ब्राह्मण ने भी उसे देखकर वैसा ही किया। कादम्बरी अपने महल को जा चुकी थी। हे गंगा पुत्र, मेरे भक्ति की संगति, रात्रि जागरण और मेरा श्रद्धा से पूजन करने से कवि के समस्त पाप नष्ट हो गए। अतः द्वादशी के दिन वो अपना समस्त धन दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया, उसने भी मेरे ब्रह्मचारी की भांति देखा देखी उसी प्रकार मेरा पूजन किया। रात्रि भर कादम्बरी के साथ नृत्य गान कर सुबह उसने गोमूत्र का आचमन किया। दूसरे दिन गोमूत्र का आचमन किया। तत्पश्चात उसने भी अपना समस्त धन दान कर दिया और सन्यासी हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गान और रूप लावण्य को देखकर ब्रह्मचारी का मन चलायमा नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। हे भीष्म जी, इसी प्रकार त्रयोदशी को दृढ़, चतुर्दशी को दंत और पूर्णिमा को हंसरी वहां आया। उन्होंने भी अपने दोनों बड़े भाइयों की भांति पूजन कर रात्रि भर नृत्य गान किया और दूसरे दिन व्यक्त हो गए। उनमें से दृढ़ ने गोदुग्ध का आचमन किया, दंत ने ब्रह्मचारी से बचे घी का आचमन किया और हंस नाम वाले सबसे छोटे भाई ने ब्रह्मचारी को प्रणाम करने के पश्चात यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया। इस पर पांचों भाइयों ने एक एक दिन ये व्रत किया। तो पंचगव्य में से एक एक जो है उन्होंने लिया। कार्तिक मास में मेरा पूजन और दान पुण्य करने से करोड़ यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। उधर जब राजा को कादम्बरी के नित्य प्रति महल से जाने का समाचार मिला, तो उसने उसे महल में बंद कर दिया। छिप करके वो जो है मंदिर में पांचों ब्राह्मणों से मिलने गई थी पांच रात, लेकिन पांच रात पूरे हो गए तब राजा को पता चला। तो पंचक व्रत की जो विधि है इस तरह से पूरी हो गई, और कोई नहीं जानता था कि ये मतलब समय कैसा चल रहा है, ये अनजाने में ही पंचक व्रत हो गया है ना। पांच रात जो है कादंबरी ने और इन पांचों भाइयों ने एक एक रात क्या किया, नृत्य गान संगीत है ना, भगवान का पूजन किया। इस तरह से क्या हुआ, कादंबरी को राजा ने महल में बंद कर दिया। कार्तिक मास में मेरे समक्ष नृत्य गान करने के फलस्वरूप ही अपने अगले जन्म में कादंबरी द्रौपदी हुई। हंस नाम वाला ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। एकादशी जागरण करने के कारण कवि अर्जुन हुआ। शुचि सहदेव हुआ, दंत नकुल हुआ, दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण भीम हुआ। हे भीष्म जी, पूर्व जन्मों में पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के कारण ही मैं उनके वशीभूत हुआ हूँ। देख कितनी अद्भुत कथा है। तो हे भीष्म पंचक का फिर भीष्म जी ने किया ये व्रत, तो पता है फिर भगवान भीष्म जी की भी बस में हो गए, भगवान भीष्म जी की बस में हो गए। और भीष्म जी जो है जब सरसैया में पड़े थे, युधिष्ठिर महाराज जो है जब शोकमग्न थे और कृष्ण के और व्यास देव के भी वचनों से उनका शोक दूर नहीं हो रहा था, अपने को दोषी मान रहे थे कि पूरे संबंधियों की हत्या का कारण मैं ही हूँ, अब मैं क्यों राज्य करूँ। तो भगवान कृष्ण भीष्म जी के पास लाए युधिष्ठिर महाराज को और भीष्म जी से ज्ञान दिलवाया, और भगवान कृष्ण स्वयं भीष्म जी के सामने खड़े रहे, सुनते रहे श्रोता की तरह। तो भीष्म जी को भगवान ने इतना सम्मान दिया, और जब तक भीष्म जी ने शरीर नहीं छोड़ा भगवान कृष्ण उनके सामने सेवक की तरह खड़े रहे, है ना। तो ये जो है मतलब भीष्म पंचक व्रत का जो है ऐसा महात्म्य है, तो ये हमने सुना। अब आज काशीश्वर पंडित का तिरुभाव है, तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में काशीश्वर पंडित के नाम में हाथ का निशान लगा है, इसका मतलब है कि इनका तिरुभाव आता है, आविर्भाव नहीं आता है। तो साल में केवल एक ही दिन आता है, है ना। तो उनके बारे में हम पहले गौरी वैष्णव चरितामृत से सुनेंगे, उसके बाद अन्यत्र से भी सुनेंगे। ईश्वरपुरी ने अपने शिष्यों गोविंद एवं काशीश्वर पंडित को चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने हेतु जगन्नाथपुरी भेजा। ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु कौन है, गुरु हैं, है ना। तो अपने शिष्यों को, और चैतन्य महाप्रभु ही उनके शिष्य हैं, है ना। तो गुरु की आज्ञा से गुरु भाई चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए आए, है ना। अपने गुरु भाइयों से सेवा स्वीकार करने में संकोच करते हुए अंततः श्री चैतन्य ने इसे अपने गुरु की इच्छा मानकर अपनी सहमति प्रदान कर दी। गुरु की आज्ञा सर्वोपरि, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो गुरु भाई की सेवा उन्होंने इसलिए स्वीकार की। ब्रज लीला में भृंगार और भंगुर नाम से विख्यात ये काशीश्वर और गोविंद श्री कृष्ण के सेवक हैं। ब्रज लीला में भृंगार और भंगुर यही जो है चैतन्य लीला में कौन बने, काशीश्वर पंडित और गोविंद, है ना, जोड़ी है भृंगार और भंगुर। तो काशीश्वर पंडित और गोविंद ये कृष्ण की लीला में जो कृष्ण के सेवक हैं, वही चैतन्य लीला में काशीश्वर और गोविंद। सुगठित एवं बलिष्ठ काशीश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु को जन समूह द्वारा स्पर्श किए जाने से बचाने के लिए उनके आगे आगे चलते थे। कोई बलवान आदमी चाहिए ना चैतन्य महाप्रभु के आगे आगे चले जो, है ना। काशीश्वर पंडित जो है मतलब कोई अपने साथ में डंडा रखते होंगे छड़ी, और उससे भीड़ को हटाते होंगे चैतन्य महाप्रभु के लिए रास्ता बनाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु चलना भी मुश्किल, इतनी भीड़ है, और चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने जगन्नाथ जी का, और भीड़ इनका दर्शन करने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने, और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर सकते, भीड़ इनका दर्शन करने के लिए आ रही। तो काशीश्वर क्या करते हैं, भीड़ को जो है पीछे कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की रास्ता बना देते हैं। तो कोई बहुत बलवान आदमी चाहिए ना काशीश्वर पंडित जो है कि यह सेवा थी। सुगठित एवं बलिष्ठ काशीश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु को जन समूह द्वारा स्पर्श किए जाने से बचाने के लिए उनके आगे आगे चलते थे, और कीर्तन के उपरांत समस्त भक्तों को प्रसाद परोसते थे। प्रसाद परोसने का काम काशीश्वर पंडित का। श्री गौर सुंदर ने रूप गोस्वामी के विग्रह गोविंद जी के पूजन के लिए काशीश्वर को वृंदावन जाने को कहा। मतलब उनके ऊपर तो हम लोग बिजली गिर गई कि क्या आज्ञा दे दी मुझे, अब वृंदावन जाएं गोविंद जी की सेवा के लिए, और आपकी सेवा छोड़ करके मैं जाऊं वृंदावन, काशेश्वर के लिए मुश्किल हो गया। चैतन्य महाप्रभु के दूर होने के भय से काशेश्वर बोले, हे भगवान, यदि मैं आपका संग त्याग दूंगा तो मेरे हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, मैं नहीं जा सकता। अपने भक्त के प्रति कृपावश भगवान गौरचंद्र ने उन्हें अपना एक अर्चा विग्रह दिया। भगवान ने, नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूं, और भगवान ने अपना अर्चा विग्रह दिया किसको, काशेश्वर पंडित को, जो इतना त्रुटिहीन था। हरिबोल हरिबोल, जो साक्षात चैतन्य महाप्रभु के समान दिखता था, गौर गोविंद नामक वो अर्चा विग्रह बंसी बजाते हुए श्री कृष्ण का स्वर्णिम रूप है। तब काशीर पंडित गौर गोविंद और गोविंद जी की सेवा के लिए प्रसन्नता पूर्वक वृंदावन प्रस्थान कर गए। अर्चा विग्रह में जो है मतलब इतना गुण था कि चैतन्य महाप्रभु का पूरा संग उनको प्राप्त हो रहा था। गौर गोविंद अर्चा विग्रह तो साधन दीपिका में कथन है, मैं श्री काशीर पंडित की वंदना करता हूं जिनके प्रेम और भक्ति की शक्ति श्री चैतन्य को अर्चा विग्रह रूप में पश्चिम भारत में ले आई। जयपुर, जयपुर पश्चिम भारत में है ना, तो जयपुर में है भी वो गौर गोविंद। तो इनकी प्रेम की शक्ति थी कि चैतन्य महाप्रभु का अर्चा विग्रह रूप कहां पर आ गया, जयपुर में आ गया, है ना। आज जयपुर राजस्थान में हजारों भक्तगण द्वारा गौर गोविंद और गोविंद जी के मूल अर्चा विग्रहों की प्रेम पूर्वक आराधना की जा रही है। काशीश्वर पंडित की मूल समाधि 64 समाधि पीठ में है। काशीश्वर पंडित के बारे में हरिओम, गौर गोविंद दीपिका में लिखा हुआ है, पुरा वृंदावने चेत स्थित भृंगार भंगुर श्री काशीश्वर गोविंद तो जातो प्रभु सेवक। हरिबोल हरिबोल, कुछ तार निकल जाता है आज बड़ी बाधा हो रही। हरिबोल हरे कृष्णा। पहले वृंदावन में भृंगार और भंगुर नामक जो भृत्य थे उन्होंने काशीश्वर और गोविंद नाम धारण करके श्रीमन महाप्रभु के सेवक के रूप में जन्म ग्रहण किया। वृंदावन में नंद महाराज के महल में अनेकों सेवक थे, उनमें से कुछ विशेष सेवक थे जिन पर श्री कृष्ण की सेवा की विशेष जिम्मेदारी थी। श्री कृष्ण के शरीर को दबाना, मालिश करना, उनके लिए जल लाना, उनके इशारे पर उनकी आज्ञा को समझना और तुरंत करना, ये इनकी विशेषता थी। और इनके नाम थे भृंगार और भंगुर। क्या नाम थे? भृंगार और भंगुर। ये दोनों श्री चैतन्य लीला में काशीश्वर और गोविंद रूप में सम्मिलित हुए। काशीश्वर एवं गोविंद ये दोनों ही महाप्रभु के श्री गुरुदेव ईश्वरपुरी के निजी सेवक थे। स्वयं श्री ईश्वरपुरी शरीर त्यागने से कुछ दिन पूर्व दोनों को विशेष आज्ञा देकर महाप्रभु की सेवा में भेजा था। ये दोनों महाप्रभु की सेवा में आए। हरिबोल, महाप्रभु ने अपने श्री गुरुदेव का सेवक जानकर अपने समान ही सम्मान देकर इनका स्वागत किया कि मेरे गुरु के सेवक हैं तो मेरे सेवक कैसे बन सकते हैं। लेकिन ईश्वरपुरी की जैसे एक सेवक महाप्रभु थे वैसे ही दोनों थे। दोनों ने श्री गुरुदेव की आज्ञा सुनाई, महाप्रभु संशय में पड़ गए कि मैं भी गुरुदेव का सेवक हूं तो हम तो दोनों समान हैं, हम तो तीनों समान हैं, तो अब आप दोनों मेरे सेवक कैसे बन सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु संशय में पड़ गए, समान अधिकार वाले विशेषता जिन्होंने मेरे श्री गुरुदेव की सेवा की है, अब मैं उनसे सेवा कैसे लूं, नहीं तो। लेकिन दूसरी तरफ गुरु आज्ञा, गुरु की आज्ञा हो रही, दुविधा हो गई नहीं। एक तरफ गुरु की अवज्ञा हो रही, गुरु की आज्ञा है कि इनकी सेवा स्वीकार करो। महाप्रभु ने विद्वानों पर निर्णय डाल दिया और सर्वसम्मत निर्णय से दोनों को सेवा हेतु सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो भाई आप लोग निर्णय करो कि अब मैं क्या करूं। देखो भगवान का कैसा गुण है, भगवान कैसा गुण है, तो ये हमें सीखना चाहिए कि एकदम से अपने आप कोई निर्णय लेने से अच्छा है कि सबके ऊपर जो है ये भार डालो कि भाई आप लोग मिल करके निर्णय करो। काशीश्वर महाप्रभु के फील्ड इंचार्ज थे, महाप्रभु को दर्शन आदि के लिए ले जाना, विरह प्रेम की अवस्था में उन्हें संभालना। हरिबोल, और सुरक्षित वापस लाना। ब्रह्म की अवस्था में तो हरिभू, ब्रह्म की अवस्था में तो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर बहुत संकट आता था, तो ये सुरक्षा करते थे चैतन्य महाप्रभु की। किसी भक्त की कुटिया पर ले जाना और ले आना, किसको? चैतन्य महाप्रभु को। ये समस्त जिम्मेदारी का असर ब्रह्मचारी पर थी। वहीं गोविंद पर महाप्रभु की शरीर की सेवा थी, प्रसाद भिक्षा की पूरी जिम्मेदारी थी। इस प्रकार से काशीधर पंडित का आज तिरुभाव दिवस है, जो कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से काशीधर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। श्री निम्बार्काचार्य आज इनका आविर्भाव दिवस है, तो इनके नाम में भी हाथ का निशान है। इसका मतलब है कि इनका तिरुभाव दिवस नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे भी हरिबोल, कुछ ऐसे भी वैष्णव आचार्य हैं जिनका आविर्भाव है, तिरुभाव नहीं, तिरुभाव नहीं आता वैष्णव कैलेंडर में। तो निम्बार्काचार्य का के बारे में इसमें से पढ़ के सुना रहा हूँ, गौरी वैष्णव चरितामृत। चैतन्य महाप्रभु के अवतरण से लगभग 300 वर्ष पूर्व निम्बार्काचार्य ने जो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। नवदीप धाम महात्म में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि निम्बार्क ने बिल्व पक्ष रुद्रदीप में शिव जी की उपासना की थी। नवदीप के अंदर एक रुद्रदीप भी है ना, वहां शिव जी की उपासना की थी। किसने? निम्बार्क आचार्य ने। शिव जी ने निम्बार्क के सामने प्रकट होकर उन्हें आज्ञा दी कि समीप स्थित ध्यानस्थ चार कुमारों से दीक्षा ग्रहण करें। कुमार संप्रदाय है ये, तो चार कुमार भी वहां पर ध्यान में स्थित थे। कहां पर? रुद्रदीप में। तो शिव जी ने आज्ञा दी। निम्बार्क ने राधा कृष्ण मंत्र प्राप्त किया, किससे? चार कुमारों से, और नवदीप में ही वास करते रहे। सनत कुमार संहिता में प्रदत्त शिक्षाओं का पालन करते हुए उन्होंने प्रगाढ़ प्रेम सहित राधा कृष्ण की आराधना की। जल्दी ही निम्बार्क के समक्ष राधा कृष्ण प्रकट हुए और युगल किशोर ने उनके सामने श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अपना रूप प्रदर्शित किया। तो 300 साल बाद जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार होने वाला था, वो 300 साल पहले अपना रूप दिखला दिया। राधा कृष्ण से क्या बन गए? चैतन्य महाप्रभु। निम्बार्क को बताया कि तुम तो नहीं रहोगे उस समय, लेकिन 300 साल के बाद मैं इस रूप में अवतार लूंगा। निम्बार्क को बताया। गौरांग महाप्रभु ने कहा, निम्बार्क, भविष्य में जब मैं अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ करूंगा तो स्वयं अचिंत भेदाभेद तत्व के पूर्ण सिद्धांत का प्रचार करूंगा। मैं मध्य संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय और विष्णु स्वामी के संप्रदाय के सिद्धांतों का सार ग्रहण करूंगा। निम्बार्क, तुमसे मैं दो महत्वपूर्ण सिद्धांत लूंगा। भगवान क्या कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु ने चारों संप्रदायों में से दो दो सिद्धांत लिए, तो निम्बार्क संप्रदाय से दो सिद्धांत मैं लूंगा। पहला, श्रीमती राधा रानी के शरण ग्रहण करने की आवश्यकता। दूसरा, श्री कृष्ण के प्रति ब्रज गोपियों के प्रेम का महान सम्मान। ये दो सिद्धांत निम्बार्क संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने लिए हैं। निम्बार्क को उपदेश देने के उपरांत गौरांग महाप्रभु अंतर्धान हो गए। स्नेह से आंसू बहाते हुए निम्बार्क ने अपना प्रचार कार्य पर आरंभ करने हेतु नवदीप त्याग दिया। चैतन्य लीला में निम्बार्क केशव कश्मीरी के रूप में प्रकट हुए और साक्षात निमाई पंडित से भगवत प्रेम प्राप्त किया। क्या समझे? निम्बार्काचार्य ही केशव कश्मीरी, 300 साल के बाद वही केशव कश्मीरी के रूप में प्रकट हुए और चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने फिर भगवत प्रेम प्राप्त किया। गौरी सिद्धांतों और निम्बार्क सिद्धांतों में समानताएं हैं। निम्बार्क के अनुयायी भी शरणागति की छह विधियों को स्वीकार करते हैं, भक्ति के नौ अंगों का अभ्यास करते हैं और 10 जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको मानते हैं। यदि वृंदावन में श्री राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, वे सर्वोत्कृष्ट भक्त के रूप में श्रीमती राधा रानी की आराधना करते हैं और वे श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को सर्वोच्च मानते हैं। भजन कीर्तन और जपमाला पर जप करते हुए निम्बार्क संप्रदाय के लोग महामंत्र के अपने विशिष्ट पाठ राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे का उच्चारण करते हैं। हरि बोल। वृंदावन में गोवर्धन से लगभग 1 मील दूर नीम गांव नामक एक ग्राम है जो निम्बार्काचार्य के नाम पर आधारित है। नीम गांव जहां वे बाल्यकाल में रहते थे और बाद में उन्होंने वहां पर भजन किया। वृंदावन में राधा कृष्ण की अधिकांश लीलाओं का अनुरक्षण आजकल निम्बार्क संप्रदाय द्वारा किया जा रहा है। मथुरा वृंदावन में असंख्य भक्त निम्बार्क भक्ति मार्ग का पालन करते हैं। वृंदावन में लोही बाजार से कुछ दूरी पर रेतिया बाजार में से श्री जी मंदिर निम्बार्क संप्रदाय का केंद्र स्थल है। तो श्री जी मंदिर की जो पूजा करते हैं वो निम्बार्क संप्रदाय के लोग करते हैं वहां की पूजा। आज भूगर्भ गोस्वामी का भी तिरुभाव है तो इनका भी आविर्भाव नहीं आता तो साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम इनकी कृपा प्राप्त करें। श्री गदाधर पंडित के शिष्य कौन है ये गदाधर पंडित के शिष्य? हरि बोल हरि बोल। गदाधर पंडित के शिष्य भूगर्भ गोस्वामी श्री लोकनाथ गोस्वामी के घनिष्ठ मित्र थे। इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही जैसे काशीश्वर गोविंद ऐसी इनकी जोड़ी है भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी। 6 गोस्वामियों से भी पहले ये आए वृंदावन में है ना। चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रेरित ये दोनों सर्वप्रथम वरिष्ठतम भक्त थे जिन्होंने वृंदावन में वास किया। 6 गोस्वामी ने वृंदावन में वास किया। उस समय क्या हाल था वृंदावन का? कोई घर मकान नहीं थे, सड़कें नहीं थे, मंदिर नहीं थे, जंगल थे और कुछ आदिवासी लोग रहते थे जो कुछ नहीं जानते कृष्ण की लीला के बारे में। कृष्ण की लीला स्थलियां सब लुप्त थी, न कोई मंदिर और न लीला स्थली, न राधा कुंड न श्याम कुंड, गोकुल वृंदावन का नाम भी नहीं, केवल गोवर्धन दिखाई पड़ता था, यमुना जी दिखाई पड़ती थी और ब्रजरथ, तीन चीजें केवल तीन चीजें थी। क्या? गोवर्धन, यमुना जी और ब्रजरथ, और बाकी सब लुप्त हो गया था है ना। उस हालत में 2 गोस्वामी पहले आए, बाद में 6 गोस्वामी आए, लोकनाथ गोस्वामी और कौन? भूगर्भ गोस्वामी। फिर रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी के पधारने के पूर्व इन्होंने राधा गोविंद की लुप्त लीला स्थलियों को जो है क्या किया? खोजा। अज्ञात को ज्ञात कराने की आधुनिक वैज्ञानिकों की आक्रामक कार्य विधि के विपरीत वैज्ञानिक लोग तो किसी चीज को जानना चाहते हैं तो आक्रामक विधि से करते हैं ना, उसको उल्टा करना, पलटा करना, तोड़ना, सूंघना, चखना, इन चीजों से किसी चीज को वो जो है जानना चाहते हैं। तो इस विधि से आप नहीं जान सकते हैं भगवान को या भगवान की लीला स्थलियों को है ना। तो इन्होंने क्या किया? आत्मसमर्पण की विनम्र विधि के द्वारा भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी ने खोजा। वैज्ञानिक विधि के द्वारा नहीं खोजा। वैज्ञानिकों को कहा जाए कि भाई खोजो ये लीला स्थलियां तो वो जो है अपना प्रयोग करेंगे, इस प्रयोग के द्वारा उस प्रयोग के द्वारा, तो ये सब संभव नहीं है। तो इन्होंने विनम्रता की विधि के द्वारा खोजा। सहज भाव से वृंदावन में सर्वत्र 12 वनों का नाम पुकारते थे। हे भांडीर वन तुम कहां हो, काम वन कहां हो, महावन, ताल वन के नाम से पुकारते और भटकते थे। तो वे जो है स्वयं बताते थे हम यहां पर हैं, मैं यहां, ताल वन तुम कहां, मैं यहां। वृंदावन तुम कहां, मैं यहां। इस तरह से लीलाश्रियों को जो है पुकारते थे। और श्रीमती वृंदा देवी ने प्रत्येक वन की स्थिति प्रकाशित कर दी। वृंदा देवी ने ऐसा कहा जाता है कि भौतिकतावादियों के संग से बचने के लिए भूगर्भ अपना भजन भूमिगत रहकर करते थे। भूगर्भ गोस्वामी जमीन के नीचे रह करते हैं, इस कारण इनका नाम भूगर्भ पड़ा। राधा गोपीनाथ के नित्य निकुंज लीला में प्रेम मंजरी है। कौन है? प्रेम मंजरी। इनकी समाधि राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में रूप गोस्वामी की समाधि के समीप है। तो प्रेम मंजरी है, मगध राजधानी के मुंगेर नगर में इनका जन्म हुआ। चैतन्य महाप्रभु के हिंदी भाषी सर्वश्रेष्ठ अनुयायी, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जो है हिंदी बोलने वालों में सर्वश्रेष्ठ यही है ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बंगाली है ना, तो हिंदी बोलने वालों में सर्वश्रेष्ठ अनुयायी यही है। पढ़ाई के बीच में छोड़कर नीलाचल के अध्ययन में गदाधर पंडित के पास आए। गदाधर पंडित भी नीलाचल में रहते थे जगन्नाथपुरी में, तो अपनी पढ़ाई है छोड़ करके आ गए गदाधर पंडित के उद्यान में आ गए। कहाँ पर? वही छोटा गोपीनाथ का जो मंदिर है वहां उद्यान था ना, बगीचा था, वहां पर आए। गदाधर पंडित के पास कुछ दिन नमाज किया और श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया माना है। और नित्य चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते थे अपने गुरुदेव के मंदिर में। गदाधर पंडित के मंदिर में चैतन्य महाप्रभु स्वयं भागवत सुनने आते थे। किससे? गदाधर पंडित से। तो इनका कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे गुरु महाराज से चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत सुनने आते हैं। हरि बोल, है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु का भी दर्शन करते थे। नाम कीर्तन टोटा गोपीनाथ मंदिर में करते थे। चैतन्य महाप्रभु के प्रेम का रसा साधन करते थे। लोकनाथ गोस्वामी का चैतन्य महाप्रभु, लोकनाथ गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु का जब आदेश मिला, अच्छा इनको आदेश नहीं मिला था वृंदावन जाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था लोकनाथ गोस्वामी को। गदाधर पंडित ने बंगाली भावुक भक्त का भार सौंपा इनको, हिंदी भाषी थे। लोकनाथ गोस्वामी इतने प्रेमी थे कि वे रास्ते चलते चलते प्रेम में बेहतर हो जाए तो वे सब भूल जाते कि वे कहाँ हैं, तो कौन संभालेगा। और फिर वहां के रास्ते में हिंदी बोलने वाले भी कोई चाहिए तो वो लोग बंगाली नहीं समझ पाएंगे, और लोकनाथ गोस्वामी बंगाली थे तो हिंदी भाषा जानने वाला भी कोई व्यक्ति चाहिए, इनके साथ उनकी देखरेख भी करें। तो गदाधर पंडित ने अपने शिष्य भूगर्भ गोस्वामी को आज्ञा दी कि तुम इनकी देखभाल करो, इनके साथ में 24 घंटे रहो। तो भूगर्भ गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी की देखभाल करने के लिए चले। दोनों पुरी से नाम संकीर्तन करते हुए, जंगलों से गुजरते हुए, शहरों से गुजरते हुए वृंदावन पहुंचे। उन दोनों पैदल ही चलना, सोचिए जगन्नाथपुरी से वृंदावन, जंगल शहर है, रास्ता पूछते थे, दिशा पूछते थे है? किस दिशा में जाना है, है ना। तो भूगर्भ गोस्वामी हिंदी जानते थे, हिंदी जानते थे, जिसकी बहुत सहायता मिली वृंदावन पहुंचने में। लोकनाथ का आदेश था विलुप्त लीला स्थलियों का पता लगाते थे, तो लोकनाथ गोस्वामी के आदेश से भूगर्भ गोस्वामी दोनों विलुप्त लीला स्थलियों का पता लगाते थे। वृंदावन के वैष्णवगण इनके समीप आए चैतन्य महाप्रभु के अंतिम लीलाओं का वर्णन प्राप्त करने के लिए। इनसे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन पूछा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के संग जगन्नाथपुरी से कोई आए तो वृंदावन के जो गोस्वामी हैं सब आते थे चैतन्य महाप्रभु का समाचार पूछने के लिए। इनकी आज्ञा से कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत लिखा। तो इनकी भी आज्ञा थी कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए चैतन्य चरितामृत में। लोकनाथ गोस्वामी ने भी आज्ञा दी थी, तो कहा था मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तब आज्ञा दूंगा, तो उन्होंने भी आज्ञा दी थी। तो इसलिए इनका नाम और लोकनाथ गोस्वामी का नाम चैतन्य चरितामृत में नहीं है। एक बार गिरिराज की परिक्रमा कर रहे थे, इनका नियम था क्या, रोज गिरिराज की परिक्रमा करना। पांव में भारी चोट लग गई, भारी चोट लग गई तो अब गिर गए, अब तो खड़े भी नहीं हो पाते। गिरिराज की परिक्रमा में जो है पैर में भारी चोट लग गई तो गिर गए, अब खड़े भी नहीं हो सकते। तो भगवान एक पहलवान भक्त बन करके आए हैं। भगवान तो हमेशा मौका ढूंढते रहते हैं कि कैसे अपने भक्त की सेवा करूं। तो पहलवान भक्त के रूप में आए और इनके मना करने पर भी कंधे पर बिठाया और निवास स्थान तक लाए और अंतर्धान हो गए। जब अंतर्धान हो गए तब पता चला कि कपट किया मेरे साथ भगवान ने। अंतर्धान हो गए, रहस्य पता चला तो व्याकुल हो गए और दिन भर विलाप करते रहे। किस बात से विलाप करते रहे कि भगवान ने मुझे अपने कंधे पर उठाया, मेरा तो बड़ा अपराध हो गया। तो रात्रि में जरा आंख लगी, रात्रि में थोड़ी आंख लगी, ऐसे होना आंख भजन करते करते ऐसे तो थोड़ा आंख लगी। तो श्याम सुंदर स्वप्न में आए, तुम मेरा नित्य भजन करते हो, पूजन करते हो, मैंने एक बार कंधे पर बैठाकर घर पहुंचाया, तो क्यों व्याकुल हो रहे हो? भगवान की वाणी से कृतार्थ हो गए। राधा छल बिहारी इनके अत्य विग्रह हैं राधा दामोदर मंदिर में। इस प्रकार से हमने सबकी चर्चा कर ली। एक रह गया, क्या रह गया है? रास यात्रा है, श्री कृष्ण रास यात्रा। तो श्री कृष्ण की रास यात्रा तो हमेशा पूर्णिमा में होती थी, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा में भी जो है भगवान कृष्ण की एक विशेष रासलीला हुई। तो आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो कार्तिक पूर्णिमा की रासलीला का वर्णन गर्ग संहिता में प्राप्त होता है। और ये उस समय की घटना है कि भगवान मथुरा में थे और उद्धव जी को भेजा था, है ना। तो श्रीमद् भागवत में फिर आगे वर्णन नहीं आता कि भगवान मथुरा से आए वृंदावन, लेकिन इसमें आता है वर्णन कि उद्धव जी ने राधा रानी को वचन दिया कि मैं कृष्ण को मतलब लाऊंगा अपने साथ लेके आऊंगा, वचन दिया था। और भगवान कृष्ण आए थे और ब्रजवासियों से मिले थे और फिर से रासलीला की थी, है ना। इसका बहुत ज्यादा विस्तृत वर्णन है, तो मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा, तो इसको आप सुनिए बड़े ध्यान से। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों और श्री राधिका के साथ रास मंडल में उपस्थित हो साक्षात श्री हरि ने मुरली बजाई। अधरात्र्यां हरे साक्षां कार्तिक्यां रास मंडले गत्वाननाद मुरलीं गोपी भी राधया सह। हे राजन, यमुना के निकट रास की रंगभूमि में श्री राधा और अन्य सुंदरी ब्रज रमणियों के साथ राधा वल्लभ श्री कृष्ण शोभा पाने लगे। यमुना निकटे राजन राधे राधिका पति रामाधि सुंदरी विद्या रास रंगेर राजह। रास में जितनी गोपांगनाएं थीं उतने रूप धारण करके वृंदावनाधीश्वर श्री हरि दिव्य वृंदावन में विहार करने लगे। यावती गोपिका रासे तावन रूप धरो हरि रेमे वृंदावने दिव्य हरि वृंदावनेश्वर। उनके चरणों के नूपुर और मंजीर बज रहे थे, वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। पीतांबर धारण किए, एक हाथ में कमल लिए, प्रातःकाल के सूर्य के समान मुकुट धारण किए, विद्युत के समान जगमगाते सोने के कुंडलों से मंडित हो, बैत की छड़ी लिए बंसी बजाते हुए मेघ किसी कांति वाले श्री हरि नटवर वेश में सुशोभित हुए। कुरन्नो पुर मंजीरो वनमाला विराजिता पीतांबर धरा पद में धारी प्रभातार किरीट धृंग। पीतांबरापन में धारी प्रभातार किरीट धृंग विद्युलता स्वरतोद्यन हेम कुंडल मंडिता नेत्रभिन वादयन मंसी नटवेशो घन द्युति। अत्यंत प्रकाशमान कौस्तुभ उनके वक्षस्थल पर दिव्य प्रकाश फैला रहा था। कानों में चिकने चमकीले कुंडल हिल रहे थे। रास मंडल में श्री राधा के साथ वे उसी प्रकार शोभित हुए जैसे रति के साथ कामदेव। स्फुरन कौस्तुभ रत्नाढ्या प्रतुलन स्निग्ध कुंडल राज राधया राधे यथारत्या रति स्वर। हरि बोल। राधे राधे का राधे राधे आरा थे यथारथ यारथी सरा, इसको पकड़ लो किताब गिर जाएगी, पकड़ लो ऐसे में ठीक है। जैसे स्वर्ग में सती के साथ इंद्र और आकाश में बिजली के साथ मेघ शोभा पाते हैं, वृंदावन में वृंदा के साथ वृंदावनेश्वर की वैसी ही शोभा हो रही थी। सच्चा सत्य यथा स्वर्गे घनश्चंचलया यथा वृंदया वृंदकारण्ये तथा वृंदावनेश्वर। ये वृंदावन यमुना पुलिन वन और उपवन की शोभा देखते हुए गोपियों के साथ गोवर्धन पर्वत पर गए। वृंदावनम च पुलिनम वनान्यप वनानि चाम पश्यन् गोपीगण सार्धम गिरिम गोवर्धनम यजौ। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि 100 यूथ वाली गोपांगनाओं को अपने सौभाग्य पर अभिमान हो उठा है। 100 यूथ गोपियों के 100 यूथ हैं यहाँ पर। कार्तिकी पूर्णिमा में भगवान राज कर रहे हैं गोपियों के 100 यूथ के साथ। जैसे मिथिलापुरवासिनी स्त्रियां हैं वो अलग गोपियां बनी, उनका अलग यूथ है। कौशल प्रदेशवासिनी हैं स्त्रियां हैं वो गोपियां बनी, उनका अलग यूथ था। जलंधरपुरवासिनी स्त्रियां वो गोपियां बनी। अलग अलग अवतारों में, मत्स्य अवतार में, वामन अवतार में, राम अवतार में जितनी स्त्रियां भगवान से मोहित हुई ये सब गोपियां बनी, उनके अलग अलग यूथ। 100 यूथ हैं। और ये कहा गया कि एक यूथ 100 करोड़ का होता है, सोचिए। और सौयुक्त वाली गोपांगनाओं अपने सौभाग्य पर अभिमान हो उठा है कि प्रत्येक गोपी सोच रही कि कृष्ण मेरे ही पास है तो अभिमान नहीं होगा। 100 करोड़ × 100 इतनी गोपियों में अकेले श्री कृष्ण मेरे साथ हैं और मेरे कंधे में हाथ रख करके नृत्य कर रहे हैं तो किसको अभिमान नहीं होगा। तब श्री राधा के साथ वही अंतर्धान हो गई। गोपी नाम सभी उठा नाम मानम वीक्ष ब्रजेश्वर भगवान राधया साकम तत्रांतर धीयत। अभी गोवर्धन से 3 योजन दूर चंदन की गंध से सुवासित सुंदर रोहित पर्वत पर गए। गोवर्धन से 3 योजन दूर, 3 योजन का मतलब 36 किलोमीटर दूर तामवन में रोहित पर्वत है, वहां आदिबद्री भी हैं, तो वो स्थान अभी भी आप जा सकते हैं आदि बद्री का स्थान। तो वहां पर रोहित पर्वत पर गए। अथ गोवर्धनाद दूरे सुंदरम योजन त्रयम श्रीखंड गंध संयुक्तम सय रोहिताचलम। श्री राधा के साथ वहां के लता कुंजों और निकुंजों को देखते और बातें करते हुए सुनहरी लताओं के आश्रय भूत उस पर्वत पर विचरने लगे। सब गोपियों को छोड़ दिया है और अब भगवान राधा के साथ अकेले विचरण कर रहे हैं। लता कुंज निकुंजाचा पश्यन् जल्पन्तया सह विचार गिरारम्ये कांचने लतिकालये। वहां बद्रीनाथ के द्वारा निर्मित रमणीय देव सरोवर है। वहां देव सरोवर अभी भी देखा जा सकता है बरसात के दिनों में, बाकी तो सूख जाता है, बरसात के दिनों में वो देव सरोवर दिखाई पड़ता है। वो बद्रीनाथ ने ही बनाया है जो बड़े बड़े मत्स्यों कछुओं और मगर आदि जल जंतुओं और हंस सारस आदि पक्षियों से व्याप्त था। तत्रैव सर्वरम्यं बद्रीनाथेन निर्मितं पाठीन कूर्मनत्रादि हंस सारस संकुलम। 1000 दल कमल उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस देव सरोवर में कैसे कमल हैं? 1000 दल वाले कमल हैं। 1000 दल वाले कमल उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। इधर उधर मंडराते भ्रमरों की मधुर ध्वनि से नर कोकिलों की काकली वहां सब ओर व्याप्त थी। सहस्र दल पद्म मंडितम तदितः भ्रमर ध्वनि संयुक्तम पुंज कोकिल हृदय व्रतम। उसके तट पर मंद मंद वायु चल रही थी, प्रफुल्ल कमलों की सुगंध छाई थी और लक्ष्मी स्वरूप राधा के साथ माधव उस सरोवर के किनारे बैठ गए। विक्षण तन्न गंधाढ़्यम तत्तीरम मंद मारुतम रमया राधया सार्धम माधव ने से साध। उसी सरोवर के तट पर महामुनि ऋभु एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे थे और निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तत्पर थे। सोचिए भगवान कृष्ण एक कार्य में 1000 कार्य करते हैं। यहां सब गोपियों को छोड़कर के राधा के साथ आए रोहित पर्वत पर, देव सरोवर के तट पर, और क्या देखा, रिभु नाम के ऋषि क्या कर रहे हैं, एक पैर से खड़े होकर के निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तत्पर थे। तत्तीरम प्रतपस्यंतम रिभुम नाम महामुनिम पद के निशितम सत्सन श्री कृष्ण ध्यान तत्परम। साठ हजार 700 वर्षों से निराहार और निर्जल रहकर शांत भाव से तपस्या में लगे थे। 60,000 तो कितना हुआ, 66,000 हुआ ना। 60,000 वर्षों से निराहार और निर्जल, न भोजन न पानी, तपस्या में लगे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें देखा, षष्टिवर्ष सहस्राणि षष्टिवर्ष शतानि च निरन्नम निर्जलम शांतम श्री कृष्ण स्तंभ दर्शा। राधा ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, ये कौन है। माधव बोले, हे प्रिय, इनका महात्म बढ़ाओ, इनका महात्म बढ़ाओ, ये भक्त हैं, इन महामुनि की भक्ति देखो। किसने कहा, किसने कहा, किससे कहा, राधा से कहा। पप्रच्छ वीक्षितम राधा हसंती प्राणादवम महात्म्यम गुरु भक्तोयम तस्य भक्ति महामुने। ये कहकर श्री कृष्ण ने हे रिभो ये नाम लेकर उच्च स्वर से पुकारा। क्या नाम पुकारा, हे रिभो। किंतु उन्होंने उनका ये वचन नहीं सुना, क्योंकि वे ध्यान की समाधि में पहुंच गए थे। अब कृष्ण का ही ध्यान कर रहे हैं और कृष्ण पुकार रहे हैं तो वो नहीं सुन रहे हैं। सोचिए, हे रिभो कृष्णेन प्रोक्तम चरवता सुदम न सुतम तेन किंचिन वा चरमम प्राप्ते न वै। तब श्रीहरि उस समय मुनि के हृदय से तत्काल तुरोहित हो गए। तो भगवान समझ गए कि क्या चक्कर है, हृदय मेरा ही दर्शन कर रहे हैं, चलो तभी मैं हृदय से निकल जाता हूं। तो भगवान हृदय से निकल गए तो क्या हुआ, श्री हरि को ध्यान से निकल जाने के कारण रिभु अत्यंत विस्मित हो गए। हरि सदा तंद्र ध्यान भूवासु तिरोहितः ध्यानागतम हरिम वीक्ष मुनि इंद्रश्चाति विस्मितः। फिर तो उन्होंने आंखें खोल दी और अपने सामने बिजली के साथ मेघ की भांति राधा के साथ श्री कृष्ण को देखा। हरि वो जो अपने प्रभा से दशम दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। नेत्रेण नीलदर्शे श्री कृष्णम राधयागतम घनम चंचले वाढ़्यम रंजयंतम दिशो दश। ये देख ले हरिभक्ति परायण महात्मा शीघ्र उठे और राधा सहित श्री हरि की परिक्रमा करके मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। उत्थाय संदेह हरिभक्ति तत्पर प्रदक्षिणे कृत्य हरिम सराधिकम प्रणम्य मूर्धना नवपाद पादयो रवाच कृष्णम बहुगन गदाक्षर। अब सुनिए, बहुत सुंदर स्तुति है। आज के दिन ये घटना हुई, रिभु स्तुति कर रहे हैं, श्री कृष्ण और कृष्णा को नमस्कार है, एक जैसा नाम, श्री कृष्ण और कृष्णा को नमस्कार है। कृष्णा मतलब राधा रानी, श्री कृष्ण और कृष्णा को नमस्कार है, श्री राधा और माधव को नमस्कार है, परिपूर्णतमा और परिपूर्णतम को नमस्कार है। परिपूर्णतमा कौन है, राधा रानी, परिपूर्णतमा को और परिपूर्णतम को नमस्कार है। नमः कृष्णाय कृष्णाय राधाय माधवाय च परिपूर्णतमाय च परिपूर्णतमाय च। देव घनश्याम और श्यामा को सदा नमस्कार है, राधेश्वर और राधेश्वरी को नित्य निरंतर बारंबार नमस्कार है। घनश्यामाय देवाय श्यामाय सततम नमः राधेश्वराय सततम राधेश्वर्य नमो नमः। घनश्याम और श्यामा, राधा रानी को बोलते हैं श्यामा, घनश्याम और श्यामा को नमस्कार है और राधेश्वर और राधेश्वरी को नमस्कार है। कितने अच्छे नाम हैं, गोलोक अतीत लीला वाले श्री कृष्ण को और लीलावती श्री राधा को बारंबार नमस्कार है। असंख्य ब्रह्मांडों की देवी, असंख्य ब्रह्मांडों की निधि को नमस्कार है। गोलोकातीत लीलाए लीलावत्य नमो नमः असंख्य असंख्यांडादि देव्य सांख्य संख्यांड निधये नमः। आप दोनों भूभार हरण करने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं और मुझे शांति प्रदान करने के लिए यहां पर पधारे हैं। परस्पर संयुक्त विग्रह वाले आप दोनों श्री राधा और श्री हरि को भी, श्री हरि को मेरा नमस्कार है। भूभार हाराय भुवन गताभ्याम मच्छान्तये चात्र समागताभ्याम परस्परम संधते विग्रहाभ्याम नमो युवाभ्याम हरि राधिकाभ्याम। नारद जी कहते हैं, राजन यो कहकर श्री कृष्ण के चरण कमलों में नेत्र से प्रेम अश्रु की वर्षा करते हुए, प्रेम आनंद आनंद में डूबे हुए महामुनि ऋभु ने अपने प्राण त्याग दिए। सोचिए, है ना, 66,000 साल से ना खाया ना पिया और राधा कृष्ण के चरणों में इस प्रकार से दर्शन करते हुए, स्थिति करते हुए प्राण त्याग दिए। इत्युक्त्वा कृष्ण पादांजे प्रखरन् मांसलोचनः प्रेमानंद समायुक्त जहो प्राणान् महामुनि। उसी समय उनके शरीर से, अब सुनिए बड़े ध्यान से क्या हुआ, प्राण त्याग दिए तभी यहां पर बात समाप्त नहीं हुई। अभी क्या हुआ, उनके शरीर से 10 सूर्य के समान ज्योति निकली और दसों दिशाओं में घूमती हुई श्री कृष्ण में लीन हो गई। सदैव निर्गतम ज्योतिर दस सूर्य असमय प्रभम परिभ्रमत दस दिशा श्री कृष्ण लीनताम गतम। अब आप कहेंगे बस यहां बात समाप्त हो गई, क्या कि कृष्ण में लीन हो गए, क्या हो गए, निराकार हो गए, एक हो गए? नहीं, अभी यहां बात समाप्त नहीं, अभी सुनते रहिए। अभी क्या हुआ आगे, अपने भक्त की ये प्रेम लक्षणा भक्ति देखकर श्री कृष्ण अपने नेत्रों से आनंद आंसू बहाते हुए बड़े प्रेम से उनका नाम लेकर पुकारा। नाम लेकर पुकारा प्रेम से। तदैव निर्गतम ज्योतिर दस सूर्य असम प्रबंध पर ब्रह्म दस दिशा श्री कृष्ण लीनताम गतम। भक्तस्य भक्तिम श्री कृष्णो वीक्षण प्रेम लक्षणाम आनंदाशु कलाम मंचन प्रेमणातम चाजुहाव। निराकारवादी सोचता बस ये हो गया काम पूरा कि कृष्ण में लीन हो गए, कृष्ण में एक हो गए। लेकिन नहीं है, वो तो ऐसा लगता है कि कृष्ण में लीन हो गए, कृष्ण में एक हो गए। अभी कृष्ण पुकारे उनका नाम लेकर के कि तुम कहां हो। तब श्री कृष्ण का ऐसा रूप धारण किए जो मुनि श्री कृष्ण के चरण कमल से पुनः प्रकट हुए। उनको शरीर प्राप्त करने के लिए कृष्ण के शरीर में प्रवेश किए थे और शरीर प्राप्त करके निकले। कहां से निकले, कृष्ण के चरण से निकले। सोचिए, है ना, निराकारवादी इतने में ही संतुष्ट हो जाता है, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं है, देखो आगे कृष्ण की लीला में प्रवेश करना सबसे बड़ी बात है। पुनः कृष्ण के चरण कमल से प्रकट हुए और उनका सौंदर्य कोटि कोटि काम देवों को तिरस्कृत कर रहा था और वे विनय से सिर झुकाए हुए खड़े थे। देखिए, मतलब कृष्ण के सखा का रूप धारण कर लिया, कृष्ण के सखा बन गए। पुनः श्री कृष्ण पादाब्जाम कृष्ण सारूप मान मुनि निर्गतः कोटि कंदर्प सन्निभूति नताननः। करुणा निधि श्री कृष्ण ने वेदाओं में भरकर हृदय से लगा लिया और आश्वासन देकर अपना दिव्य कल्याणकारी हाथ उनके मस्तक पर रखा। दूर ध्यान प्रकर हृदय तमने धाय कृपा करहा आश्वास कल्याण करम करम दिव्यम धारहा। हे राजन, तत्पश्चात श्री कृष्ण और राधा की परिक्रमा करके, श्री कृष्ण और श्री राधा की परिक्रमा करके, उन्हें प्रणाम करके मुनिवर विभु एक मनोहर विमान पर आरूढ़ हो अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए गोलोक धाम को चले गए। हरि बोल। आप समझे कहां पर बात पूरी होती है, समझो है? लोग सोचते हैं बस इतना ही है, गॉड हेड इज लाइट, इतना ही पर्याप्त है, सर्वोच्च ज्ञान इतने मानते हैं कि भाई प्रकाश में एक हो जाएं, प्रकाश बन जाएं हम भी, निराकार हो जाएं हम भी। ये नहीं है, सर्वोच्च ज्ञान नहीं है ये, है? देखो, प्रदक्षिणी कृत्य हरिम तराधिकाम प्रलम्बचारो हरतम मनोहरम गोलोकलोकम प्रयागृहुर मुनिर विरंजन मैथिल मंडलम दिशाम। महामुनि रिभु की ये पराभक्ति देखकर वृद्धानु नंदनी श्री राधिका को बड़ा विस्मय हुआ। वे बहुत देर तक आनंद के आंसू बहाती रहीं। कौन? बहुत देर तक आनंद के आंसू बहाती रहीं। सोचिए ऐसा दृश्य कैसा दृश्य है कि राधा रानी बहुत देर तक आनंद के आंसू बहाएं, है ना। तो वो घटना आ गई। श्री राधिका विस्मय मांगता विषम दृष्टा परा मुक्तिम विभोर महामुने आनंद भारिणी विमुंचति चरम जगाद कृष्णम वृषभानु नंदिनी। इस तरह से मैंने अब पूरी जितने त्योहार हैं सब कवर कर दिए। श्री भूगर्भ गोस्वामी तिरुभागवती महामहोत्सव की, श्री काशीश्वर पंडित तिरुभागवती महामहोत्सव की, श्री कृष्ण रास यात्रा महामहोत्सव की, श्रीमति तुलसी सालिग्राम विवाह महामहोत्सव की, श्रीपाद निम्बार्काचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, भीष्म पंचक अंतिम दिवस महामहोत्सव की, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की, श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री गौरताय की। हरे कृष्ण हरि बोल। अब प्रश्न करने का समय नहीं है।